We welcome all the devotees on the fifth day of this seminar titled The Mantra of Success, based on the teachings of Lord Rishabhdev.
Radhe meri swamini, main radhe ko daas, janma janma moh dijiyo, Shri Vrindavan vas. Radha tu bad bhagini, kaun tapasya ki तीनों लोक के नाथ है सो तेरो अधीन जय राधा माधव कुंज बिहारी
राधा माधव कुंज बिहारी
जय 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 राधा माधव कुंज बिहारी
गोपी जन वल्लभ गिरिवर यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन
यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन
यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन
यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन
यमुनति रमन
Yamuna
Tiravana Chari कुंज बिहारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे
क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात में जाने मलिया चल की मंदिर है सुगंध समय चली नदी कली काल कुठार लिए फिरता तन कोमल चोट गिरी नजरे रत ले जिह्वा कृष्ण कुमार तो अंत समय पहले नहीं हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम
हरे 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 राम हरे राम
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
राधा गिरधारी भगवान की
जय।
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की
जय।
श्री गौर निताय की
जय।
श्रील प्रभुपाद की
जय।
निताय गौर प्रेमानंद
हरि हरि बोल।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद पांच अध्याय पांच श्लोक क्रमांक तीन श्लोक क्रमांक दो से प्रारंभ करूं। महत् सेवा द्वार माहू विमुक्ते।
महत् सेवा द्वार माहूर विमुक्ते।
तमो द्वारम योषिता संगि संगम।
तमो द्वारम योषिता संगि संगम।
महांतस्ते समचिता प्रशांता।
महांतस्ते समचिता प्रशांता।
विमन्यवः सूरिद साधवो ये।
विमन्यवः सूयद साधवो
ये। वा महिषे कृत सोहदार्था।
ये वा महिषे
जनेषु देहं भरवार्तिकेषु
जनेषु देहं भरवार्तिकेषु
गृहेषु जायात्मजरा विमसु
गृहेषु जायात्मजरातिमसु
न प्रीतियुक्तायावदार्शलोके
प्रीतियुक्तायवदार्शलोके
नूनं प्रमत्त कुरुते विकर्म
नूनं प्रमत्त कुरुते विकर्म
यदिन्द्रिय प्रीतय आपृणोति
यदिन्द्रिय
न साधु मन्ये यत आत्मनोय
न साधु मन्ये यत आत्मनोय
असन्नपि क्लेशद आसदेह
असन्नपि क्लेशद आसदेह
पराभवस्तावद बोध जातो
पराभवस्तावद बोध जातो
यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम्
यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम्
यावत् क्रियास्तावदिदं मनोवे
यावत् क्रियास्तावदिदं मनोवे
कर्मात्मकं येन शरीरबन्ध
कर्मात्मकं येन शरीरबन्ध
एवं मनः कर्मवशं प्रयुक्ते
एवं मनः कर्मवश प्रयुक्तम्
अविद्यात्मान्युपदीयमाने
अविद्यात्मान्युपदीयमाने
प्रीतिर्न यावन् मयि वासुदेवे
प्रीतिर्न यावन् मयि वासुदेवे
न मोचते देहयोगेन तव
सोह्यदार्थ
एवा मयिषे कृतसोह्यदार्थ
जनेषु देहं भरवार्तिकेषु
जनेषु देहं भरवार्तिकेषु
गृहेषु जायात्मजरातिमत्सु प्रीतियुक्तायवदार्शलोके
न प्रीतियुक्तावसाकृति एवं मनः कर्मवशं प्रयुक्ते एवं मनः ये अविद्यात्मान्युपधीयमाने
अविद्यात्मान्युपधीयमाने
प्रीतिर्न यावन् मयि वासुदेवे
प्रीतिर्न यावन् मयि वासुदेवे
नमुश्च ते देहयोगेन तावत्
नमुश्च ते देहयोगेन तावत्
कृष्ण त्वदीय पदपं कज पञ्जरान्ते अद्येव मे विशतु मा नसराज हंस प्राण प्रयाण समये कफवात पीते कंटावरो धन विदो स्मरणं कुतस्ते योन्त प्रविश्य मम वा च मीमां प्रसूक्ता सञ्जीवयत्यखिलश तिधरस्वधाम्ना अन्याश्चहस्तचरण श्रवणत्वगादी प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्र पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वा मृतमेत देव गोविंद दामो दर माधवे
तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के इस पंचम दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बड़ा योग है, भागवत कथा का पंचम दिन है, भागवत के स्कंद का पंचम अध्याय है और उस पंचम अध्याय पंचम स्कंद और पंचम दिन पांच पांच पांच। परम सौभाग्य से विभूषित भगवत कथा श्रवण करने का सुअवसर प्रायः इस संसार में बहुत कम लोगों को मिलता है। करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम श्रीमद् भागवतम लभेत। करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य और सुकृति का जब एक साथ उदय होता है तब श्रीमद् भागवत सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। हम सब बड़े भाग्यवान हैं। निश्चित पूर्व जन्मों में सुकृति और पुण्य का पुंज हमने एकत्रित किया है, जिसके फल स्वरूप आज यह दिव्य ग्रंथ का श्रवण शुद्ध आचार्यों के अंतर्गत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं। हे मेरे पुत्रों, महत् सेवा द्वार माहु विमुक्ते, महात्माओं की सेवा करने से ही हमें मुक्ति का द्वार प्राप्त हो जाता है, हमारे जीवन के मुक्ति का द्वार खुल जाता है। यही बात भगवान कपिलदेव माता देवहूति को कहते हैं, प्रसंगम अजरम पाशम प्रकृष्ट रूपेण संग प्रसंगम। जब हम साधुओं की महात्माओं की संगति करते हैं और महात्माओं की सेवा करते हैं, अजरम पाशम भगवान के धाम को प्राप्त हो जाते हैं और वह धाम के दरवाजे खुले हो जाते हैं। परंतु उससे बिल्कुल विरुद्ध महात्माओं की संगति और महात्माओं की सेवा से बिल्कुल ऑपोजिट विरुद्ध यदि हम स्त्रियों का संग करते हैं, अथवा जो पुरुष स्त्री का संग करता है ऐसे पुरुष के साथ यदि हम उठते हैं बैठते हैं तो नरक का द्वार खुल जाता है। तमो द्वारम योषिता संगी संगम। कल यह बात कुछ अधूरी रह गई थी, इसलिए कुछ लोगों के मन में संशय टेंशन और कुछ लोग हम पर क्रोधित भी हो गए होंगे कि क्या बोल रहे हैं। परंतु इसलिए आपके हाथ में यह भागवत का एक पन्ना दिया है क्योंकि हम अपना कुछ नहीं बोल रहे हैं, भगवान ऋषभदेव जो कह रहे हैं उसी बात को हम दोहरा रहे हैं। तमो द्वारम, तमो का अर्थ होता है नरक, और नरक का द्वार क्या है? योषित संगी संगम। योषित माने स्त्री, स्त्रियों का संग ही नरक का द्वार है। इसलिए नरक में जाने से बचना है तो स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। हमारे इतिहास में कई लोगों ने स्त्रियों का संग किया और बड़े बड़े चक्रवर्ती गुणवान सर्व गुण संपन्न होने के बाद भी स्त्रियों का संग करने से जीवन में पतन हो गया। बड़े बड़े राज रजवाड़े थे, नौकर चाकर धन संपत्ति सब कुछ था, परंतु स्त्रियों में आसक्ति होने के कारण सब कुछ लूट गया, बर्बाद हो गया। और वे बड़े बड़े आचार्यों ने अपना अनुभव भी कहा है, जैसे मैंने कल ययाति महाराज का अनुभव, पुरुरवा महाराज का अनुभव। पुरुरवा महाराज तो अफसोस करते करते अंत में यहां तक कह दिए, ओहो मैं उस स्त्री को ही सब कुछ मानता था, वो मेरी है मेरी है। परंतु इस संसार में कौन किसका है आज तक पता नहीं चला। पित्रो किम सोनु भार्यायाम, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। एक व्यक्ति यदि सोचे है कि मैं किसका हूं, विचार करो, पिता कहता है कि ये मेरा पुत्र है, मां कहती है ये मेरा पुत्र है, पत्नी कहती है मेरा पति है, झगड़ा। पुत्र कहता है कि ये मेरा पिता है, ऑफिस का मालिक कहता है कि ये मेरा नौकर है, देश का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि ये मेरी प्रजा है, आकाश में उड़ने वाले गिद्ध कहते हैं कि ये मेरा भोजन है, शमशान में पड़े हुए लकड़े कह रहे हैं कि ये मेरा भोजन है। ये सब लोग मेरा 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 कह रहे हैं, लेकिन हम है किसके? आज तक कोई नहीं जान पाया, और जो जान लिया उनका उद्धार हो गया। अस्त में हम भगवान के हैं, हम न तो किसी मां के हैं, न पिता के हैं, न पुत्र के हैं, न पत्नी के हैं। ये आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, हम भगवान के हैं, और यह शरीर भी भगवान ने दिया है। इसलिए हमारा प्रथम कर्तव्य, भगवान ने ही यह शरीर दिया है, हमारा जो शरीर है, शरीर में जो इंद्रिया है, इस इंद्रियों को संस्कृत में ऋषि कहते हैं, ऋषि। और भगवान समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, इसलिए भगवान को ऋषिकेश कहा जाता है। ऋषिकेण ऋषिकेशम सेवनम भक्तिर उच्यते। इस संसार में सबसे बड़ा कार्य क्या है? इस इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा करना है। तो प्रसंगम तमो द्वारम योषिता संगी संगम। पुरुरवा महाराज ने अपना अनुभव, याति महाराज ने, और हमारे इतिहास में एक राजा हो गए भर्तहरि, उन्होंने भी अपना इतिहास, अपना अनुभव सुनाया है। पहले तो राजा भर्तहरि अपनी पत्नी में आसक्त थे, परंतु जब उसे वैराग्य हुआ, राजा भर्तहरि का वैराग्य भी अद्भुत था। अपनी पत्नी राजा थे और उनकी पत्नी का नाम पिंगला था, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन एक महात्मा ने राजा भर्तहरि को अमर फल दिया, राजन आप ये अमर फल खा लो, इससे आप अमर हो जाओगे। राजा ने महात्मा से वह अमर फल ले लिया और राजा ने सोचा मैं तो मेरे से भी ज्यादा मेरी पत्नी से प्रेम करता हूं। तब राजा ने वह अमर फल अपनी पत्नी पिंगला को दे दिया कि तुम खा लो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। पिंगला ने वह अमर फल रख लिया, परंतु दुर्भाग्य से वह पिंगला राजा को नहीं किसी और से प्रेम करती थी, उस राज्य में घोड़े की देखभाल करने वाले से प्रेम करती थी। रात को 12 बजे राजा सो गए थे और पिंगला उस घोड़े वाले के पास गई और कहा देखो मैं मेरे पति से प्रेम नहीं करती हूं, तुमसे प्रेम करती हूं, इसलिए यह अमर फल तुम खा लो और अमर हो जाओ, मैं तुम्हें अमर देखना चाहती हूं। घोड़े की रखवाली करने वाले ने अमर फल ले लिया, परंतु उससे भी बड़े दुर्भाग्य की बात कि वह घोड़ा वाला पिंगला से नहीं किसी और वेश्या से प्रेम करता था। रात को 2 बजे वेश्या के पास गया, उनका नाच गान देखा और वेश्या को कहा कि आज मैं तुम्हारे लिए अमर फल लेकर आया हूं, मैं अमर फल खाकर क्या करूंगा, तुम इतनी सुंदर हो, ये अमर फल खा लो, अमर हो जाओगी। घोड़े वाले ने वेश्या को अमर फल दे दिया। अब वेश्या ने सोचा कि ये अमर फल खाकर मैं क्या करूंगी, यदि मैं राजा को बेच देती हूं तो बहुत पैसे मिलेंगे। तब वेश्या घूमते फिरते वह फल राजा के पास आया। फिर से वेश्या ने कहा देखो मेरे पास ऐसा अमर फल है जिसे खाकर व्यक्ति अमर हो सकता है, कितना रुपया दोगे? राजा ने धन दिया, अमर फल लिया, तो राजा ने सोचा ये तो मेरा ही अमर फल है, परंतु राजा ने पता लगाया कि ये वेश्या के पास कैसे गया। तब राजा को पता चला संसार में मैं जिससे, मुझसे भी ज्यादा जिससे प्रेम करता हूं, वो पिंगला किसी और से प्रेम करती है। तुरंत राजा को वैराग्य आया। राजा भर्तहरि ने वैराग्य शतक नामक एक ग्रंथ लिखा, उसमें राजा भर्तहरि अपना अनुभव कहते हैं, भोगान भुक्ता वैमेव भुक्ता। अरे मैं सोच रहा था कि मैं भोगों को भोग रहा हूं, मैं राजा था, चक्रवर्ती सम्राट था, अनेकों पत्नियों को, रानियों को मैंने भोगा, और मैं सोच रहा था कि मैं भोगों को भोगता था, परंतु वास्तविक बात तो यह है कि भोगों ने मुझे भोग लिया। भोगा न भुगता वैमेव भुगता, तपसा न तपता वैमेव तपता। मैंने तपस्या को नहीं, तपस्या ने मुझे तपा दिया। कालो न यातो वैमेव याता, काल खत्म नहीं हुआ परंतु काल ने ही मुझे खत्म कर दिया। तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा, और जीते जी मेरे मन में स्त्रियों को भोगने की जो तृष्णा थी, जीते जी तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, बूढ़ी नहीं हुई परंतु मैं बूढ़ा हो गया हूं। राजा भर्तहरि का अनुभव है कि ये जो तृष्णा है, विषय भोग भोगने की लालसा है, ये कभी बूढ़ी नहीं होती, हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है। इसलिए शुरू से ही अभ्यास होना चाहिए योषित संग से दूर रहने का। तब यहां शास्त्र में अनेकों कथा, अनेकों इतिहास सिद्धांतों के द्वारा समझाया गया। भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि स्त्रियों का संग करने से तुम नरक में जाओगे, तो तुरंत एक आचार्य प्रश्न उठाते हैं कि स्त्रियों का संग करने से यदि व्यक्ति नरक में जाता है तो जितने भी गृहस्थ है सब लोग नरक में जाएंगे, क्योंकि गृहस्थ तो स्त्रियों का संग करते ही है। तब इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, वास्तव में भगवान के द्वारा चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। भगवद गीता में भगवान कहते हैं भगवान ने चार वर्ण और चार आश्रम बनाए हैं। सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचारी आश्रम। एक व्यक्ति को 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहना चाहिए। फिर दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम, 50 से 75 वर्ष तक। और चौथा आश्रम है सन्यास आश्रम। तो ये चार प्रकार के आश्रम है, और इस चार प्रकार के आश्रम में सबसे श्रेष्ठ आश्रम है ब्रह्मचारी आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम। हम देखिए हमारे सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी से प्रथम 10 पुत्र उत्पन्न हुए, और उस 10 पुत्रों ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, 10 ब्रह्मचारी बने गए। चार कुमार, सनक, सनातन, सनंदन, नारद, ये सब ब्रह्मचारी हो गए। इसका अर्थ है कि ब्रह्मचर्य आश्रम जो है बहुत भगवान की भक्ति में अनुकूल आश्रम है। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। उस 24 गुरु में से एक गुरु था कुंवारी कन्या। एक कन्या थी, उनकी उम्र हो चुकी थी, और माता पिता ने कई लोगों को कह के रखा था यदि मेरी बेटी के लिए अच्छा लड़का हो तो हमारे घर पर लेकर आना। तो एक दिन लड़के वाले उस कन्या के घर पर आए, परंतु माता पिता घर पर नहीं थे। अब लड़के वाले आए हैं तो उनके लिए कुछ बनाना, स्वागत करना, तो कन्या ने सोचा कि गरम गरम दूध बनाऊं और उसमें कुछ मसाला, किशमिश, बादाम इत्यादि डालूं। लेकिन घर पर मसाला तैयार नहीं था, तो कन्या अंदर बैठी बैठी उस मसाले को पीसने लगी। पहले के जमाने में ग्राइंडर मिक्सर नहीं था, लेकिन यदि मसाला पीसने का आवाज बाहर चला जाए तो लड़के वाले क्या सोचेंगे कि ये लोग कितने आलसी हैं, पहले से बनाकर नहीं रखते हैं। तो वह कन्या धीरे से उसको कूट रही थी, लेकिन हाथ में 4-5 चूड़ियां थी, वह चूड़ियों की आवाज आ रही थी। तो कन्या ने एक चूड़ी को निकाल दिया, लेकिन फिर भी आवाज आ रही थी, और एक चूड़ी को निकाल दिया, 3 चूड़ी बची, फिर भी आवाज आ रही थी, और एक चूड़ी निकाल दिया, केवल 2 चूड़ी बची, मसाला कूट रही थी, फिर भी आवाज आ रहा था। 2 चूड़ी में से 1 चूड़ी तोड़ डाला, 1 ही चूड़ी हाथ में बची, और फिर जब कूटने लगी किसी भी प्रकार की आवाज नहीं। भगवान दत्तात्रेय ने देख लिया, बस गुरु बना लिया, कि जब तक जीवन में 5 जन, 4 जन, 3 या 2 साथ में रहेंगे तब तक डिस्टर्ब होगा, परंतु अकेले होंगे नो डिस्टर्ब, कोई आवाज नहीं। अच्छा, ताली बजाई, ब्रह्मचारी रहोगे सब लोग ताली बजाने वाले। तो ब्रह्मचर्य आश्रम भगवान का भजन करने के लिए बहुत उत्तम आश्रम है, जिसमें भगवान की भक्ति जो है, भगवान का धाम जो है, बिल्कुल हाईवे बन जाता है, कोई कोई रुकावट नहीं। देखिए ब्रह्मचारी आश्रम और गृहस्थ आश्रम में क्या अंतर है। मान लो यहां से हमको मीरा रोड इस्कॉन मंदिर में जाना है, जैसे हमको भगवान के धाम में सबको जाना है क्योंकि तभी तो हम सुखी होंगे, वैसे यहां से मीरा रोड मंदिर में जाना है तो दो ऑप्शन है आपके हाथ में, दो विकल्प है। एक मोटरसाइकिल लेकर जाना, मोटरसाइकिल लेकर, और दूसरा ट्रक लेकर जाना। मोटरसाइकिल बिल्कुल कहां से गैप निकाल कर यहां यहां करके 10 मिनट में पहुंच जाएगी, और ट्रक वाला ठेले वाला बेचारा आधा घंटा सिग्नल पे खड़ा रहेगा, धीरे धीरे करके जाएगा। बस गृहस्थ आश्रम और ब्रह्मचारी आश्रम में इतना अंतर है। गृहस्थ आश्रम जो है मोटरसाइकिल की जैसा है, क्षमा कीजिए, ब्रह्मचारी आश्रम मोटरसाइकिल जैसा है, तुरंत भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं, और गृहस्थ आश्रम वो ट्रक जैसा है, पूरी जंजाल को साथ में लेकर चलो। तो इस प्रकार ब्रह्मचारी आश्रम गृहस्थ, लेकिन मोटरसाइकिल वाला यदि बारिश का मौसम हो, पानी हो, तो कभी स्लिप हो सकता है, गिर सकता है, ट्रक वाले को कोई टेंशन नहीं। यदि एक्सीडेंट भी हो गया तो सामने वाले को नुकसान होगा, ट्रक वाले को बिंदास। वैसे गृहस्थ आश्रम में भी ये फायदा है कि ब्रह्मचारी आश्रम में थोड़ा भी यदि गलती हो गया तो सफेद चद्दर में थोड़ा सा धब्बा होता है तो तुरंत दिख जाता है, लेकिन गृहस्थ आश्रम बिल्कुल सेफ है, कोई टेंशन नहीं है। तो वास्तव में सृष्टि के प्रारंभ में प्रायः लोग ब्रह्मचारी आश्रम स्वीकार किए। हमारे वेदों में, शास्त्र में ब्रह्मचारी आश्रम की बहुत महिमा है, परंतु यदि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता है, यदि कोई व्यक्ति की इंद्रियां वश में नहीं है, तो वेद और शास्त्र उसे गृहस्थ जीवन जीने की अनुमति देता है कि आप किसी एक स्त्री के साथ विवाह कर लीजिए और गृहस्थ जीवन जी। लेकिन भगवान ने यह गृहस्थ आश्रम क्यों बनाया? देखिए चारों वर्ण और चारों आश्रम भगवान ने उनकी प्राप्ति करने के लिए बनाया, उनके धाम में जाने के लिए। चार ही वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नाहीं भजे, सही तपापी रो रो पड़े मजे। ये चारों वर्णाश्रम जो है, वर्ण और आश्रम जो है, वे भगवान की प्राप्ति करने के लिए। चलो भाई ब्रह्मचारी नहीं रह सकते हैं तो वेद और शास्त्र अनुमति देते हैं कि आप गृहस्थ जीवन स्वीकार करो। तो गृहस्थ जीवन स्वीकार करने के पीछे उद्देश्य क्या है? इंद्रिया वश में नहीं है तो किसी भी एक स्त्री के साथ विवाह करके धीरे 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 भोग भोगते भोगते भगवान की भक्ति करते करते उस भोगों से विरक्त होना, यह है गृहस्थ जीवन की थियरी। धीरे धीरे करके इंद्र तृप्ति और भोगों की लालसा से मुक्त होना। परंतु कुछ लोग सोचते हैं विवाह हो गया तो लाइसेंस मिल गया, अब जो भी करना है करो बिंदास। कहते हैं हमारा तो विवाह हो चुका है। देखिए लाइसेंस मिल जाता है इसका अर्थ यह नहीं कि आप सिग्नल के ऊपर खड़े न रहो। शादी हो गई, विवाह हो गया, इसका अर्थ यह नहीं कि आप कभी भी स्त्रियों के साथ, अपनी पत्नी के साथ संग करो। उसकी भी कुछ मर्यादा है। यहां पर सीधा कहा जा रहा है तमो द्वारम योषिता संगी संग। और हमारे शास्त्र में स्त्री और पुरुष का संग क्यों करने के लिए अनुमति दी है? क्योंकि प्रजा की उत्पत्ति करने के लिए। शास्त्र में तो बिल्कुल सीधा लिखा है कि एक पुरुष को स्त्री का संग मात्र पुत्र प्राप्ति करने के लिए ही करना चाहिए, परंतु हम यह न करते हुए इंद्रिय भोग, इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए यह कार्य करते हैं। हमारे मन और बुद्धि में ऐसा डस गया है कि ऐसा करने से हम लोग सुखी हो जाएंगे, परंतु ये जो संग है सुखी होने के लिए नहीं, ये मात्र प्रजा की, पुत्रों की उत्पत्ति करने के लिए मिला है। इसलिए जब एक बहुत बड़े विद्वान को, श्री प्रभुपाद जी को भी पूछा गया कि एक पुरुष को अपनी पत्नी के साथ कितनी बार संग करना चाहिए, श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि एक जीवन में एक ही बार संग करना चाहिए पुत्र की उत्पत्ति के लिए। यदि ऐसा न कर सके तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा एक साल में एक बार, कहा कि यदि ऐसा न कर सके तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा एक महीने में एक बार, तो किसने कहा यदि ऐसा न कर सके तो प्रभुपाद जी ने कहा एक काम करो, खड्डा खोद कर रखो और उसमें आत्महत्या करके मर जाओ, क्योंकि मनुष्य जीवन यह भोग भोगने के लिए नहीं है। भले विवाह हो चुका है लेकिन फिर भी एक पत्नी और पति को समझौता करते हुए समझते हुए ऐसे यौन सुख से दूर रहना चाहिए। आप लोग कहोगे इससे क्या होता है, इससे बहुत बड़ी हानि होती है स्त्रियों की और पुरुषों की। हानि यह होती है कि जब कोई पुरुष स्त्री का संग करता है तो उसका वीर्य का पतन हो जाता है और स्त्री के रज का पतन हो जाता है, और जब किसी पुरुष के वीर्य का पतन हो जाता है उसके जीवन की जो प्रगति है प्रोग्रेस जो है रुक जाता है। इस संसार में जितने भी पुरुष सक्सेस हुए हैं उसके पीछे एक ही राज है कि वे लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। हम सबको ऊर्ध्वरेता बनना है, और ऊर्ध्वरेता कब बन सकते हैं, जब हम हमारे वीर्य को संभाल कर रखेंगे। परंतु यौन सुख के पीछे स्त्रियों का संग करने के लिए व्यक्ति काम का कीड़ा बन जाता है और उस वीर्य की रक्षा नहीं कर सकता है। हमारे साइंटिस्टों ने और वेदों ने बहुत बड़ा रिसर्च किया है। हम जब कुछ भोजन करते हैं तो उस भोजन करने के 5 दिन के बाद उस भोजन का रक्त बनता है, ब्लड बनता है, और भोजन के 10 दिन के बाद उस रक्त से मांस बनता है, भोजन के 15 दिन के बाद उसका मेद बनता है, भोजन के 20 दिन के बाद उसकी हड्डी बनती है, भोजन के 25 दिन के बाद मज्जा बनता है, और उस भोजन के 30 दिन के बाद वीर्य बनता है। और यदि इसको और गहराई से देखा जाए, यदि आप एक दिन में 1 किलो भोजन करते हो, एक दिन में 1 किलो कोई भोजन नहीं करता है, मैक्सिमम यदि आप एक दिन में 1 किलो भोजन करते हो तो 30 दिन में 30 किलो भोजन करोगे। 30 किलो भोजन करने से 800 ग्राम रक्त बनता है। 1 महीना आप भोजन करते हो तो 1 महीने में 800 ग्राम खून बनता है, और 800 ग्राम खून से 20 ग्राम रक्त 20 ग्राम वीर्य बनता है। 1 महीने में किसी भी पुरुष का ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 20 ग्राम वीर्य बनता है, और जब कोई पुरुष किसी स्त्री का संग करता है तो उस स्त्री के एक बार संग करने में 15 से 20 ग्राम वीर्य स्खलित हो जाता है, जीवन बर्बाद कर देता है। जब तक वीर्य को नहीं संभाल के रखता है तब तक व्यक्ति की प्रगति नहीं हो सकती है, भगवान की भक्ति में यह बाधा है। और यही सिद्धांत स्त्रियों के लिए है, पुरुषों का वीर्य और स्त्रियों का रज, ये दोनों संभाल के रखना है। इसलिए यहां पर भगवान ऋषभदेव कहते हैं तमो द्वारम योषिता संगी संगम, स्त्रियों का संग जो है तमो का द्वार है, नरक का द्वार है, इसे बचना है। एक बार एक माली था, उन्होंने मुंबई में 200 स्क्वायर फुट जगह खरीदा, बहुत महंगा, और 200 स्क्वायर फुट जगह खरीद के उसमें बहुत सुंदर बगीचा बनाया, मिट्टी लाया, बगीचा बनाया और गुलाब के सुंदर सुंदर उसमें फूल उगाए। कई महीनों के बाद फूल उगे, तब उन्होंने उस फूल को तोड़कर फिर उसका अत्तर बनाया, परफ्यूम बनाया। 6 महीना मेहनत करने के बाद इतने बड़े गुलाब से इतना धन, इतना परिश्रम करके 1 किलो अत्तर बना, और फिर उसने वह अत्तर गटर में फेंक दिया। इससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, भोजन करते हैं, और ये सारी शक्ति ही मात्र ये यौन सुख में वेस्ट कर देते हैं। जो शक्ति भगवान के भजन में, संसार में यदि, भौतिक संसार में भी यदि प्रोग्रेस करना है, प्रगति करना है, तब भी किसी व्यक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा। इस संसार में जिन जिन लोगों ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है वे उनके स्थान पर उत्तीर्ण हुए हैं, अपने स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा, भारत के रहने वाले और विदेश में जाकर हमारी भारत की संस्कृति का डंका बजा दिए। क्यों? नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। इसलिए भगवान ऋषभदेव कहते हैं किसी भी व्यक्ति को स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। तब मानो ऋषभदेव के 100 पुत्र ने कहा चलो स्त्री का संग नहीं करना चाहिए तो फिर किसका संग करे, किसके साथ मिले झूले उठे बैठे। तब भगवान ऋषभदेव कहते हैं साधु का संग करना चाहिए। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, समस्त शास्त्र एक स्वर से एक साथ कहते हैं कि साधु का संग करो, क्योंकि साधु का संग करने से ही प्रगति हो सकती है, भगवान का धाम प्राप्त हो सकता है। इतिहास खोलकर देख लीजिए जिन जिन लोगों ने साधुओं का संग किया है उनको निश्चित भगवान मिले हैं। रत्नाकर नाम का एक डाकू था जो रात दिन पशुओं को मारता था, पशुओं का वध करता था। एक दिन उसे नारद मुनि जैसे साधु मिल गए और नारद जी ने कहा आप पशुओं को क्यों मार रहे हो, पशुओं को मारने से नरक में जाओगे। नारद मुनि का संग करने से वह रत्नाकर डाकू का हृदय पवित्र हो गया। नारद मुनि से भगवान का मंत्र धारण किया और भगवान का मंत्र लेकर वह रत्नाकर डाकू संसार का बहुत बड़ा विद्वान वाल्मीकि बन गए। संतों का संग। भगवान ऋषभदेव कहते हैं स्त्रियों का, और जो स्त्रियों का संग करते हैं उनसे दूर रहकर भक्तों का संग करना चाहिए, संतों का संग, महात्माओं का संग करना चाहिए। तब तुरंत भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र ने पूछा तो पिताजी आप यह बताइए महात्मा किसे कहते हैं, महात्मा कौन है, क्योंकि आज के जमाने में महात्माओं को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। केवल धोती कुर्ता और मुंडन करने वाले ही महात्मा नहीं है, केवल लाल कपड़े पहन लेते हैं घर बार छोड़ देते हैं तो यह करने से कोई महात्मा नहीं बन जाता है। भगवान ऋषभदेव को पूछा गया महात्मा किसे कहते हैं तो भगवान ऋषभदेव ने इस दूसरे श्लोक के दूसरे चरण में महात्माओं के गुण बताए। एक जगह भी भगवान ऋषभदेव ने ऐसा नहीं कहा कि ऐसा कपड़ा पहनने वाला महात्मा है, नहीं, महात्मा जींस और टी शर्ट में भी हो सकता है, क्योंकि कपड़ों से और बाहरिक वेशभूषा से कोई महात्मा नहीं बनता है। साधु वेश धरी साधु न होई, मात्र साधु का वेश पहन लेने से कोई साधु नहीं हो जाता है, साधु के गुण होने चाहिए। व्यक्ति गुणों से महात्मा बनता है, व्यक्ति गुणों से बड़ा होता है। महात्मा बनने के लिए कुछ गुण होने चाहिए। तो जब भगवान ऋषभदेव ने कहा कि स्त्रियों के संग से दूर रहकर महात्माओं का संग करना चाहिए और स्त्रियों को पुरुषों का संग न करके महात्माओं का संग करना चाहिए तो महात्मा किसे कहते हैं, तब भगवान ऋषभदेव कहते हैं महान तते समचित्ता प्रशांता विमन्य व सुहृद साधव। महात्मा कौन है? महांत ते माने वे, वही महात्मा है जिसमें जिसका चित सम है। महात्मा का सबसे पहला गुण, देखिए हम सबको बुद्धि, भगवान ने बुद्धि प्रदान की है और इस बुद्धि से हमें देखना है कि हम जिसको महात्मा समझ रहे हैं क्या उसमें यह गुण है। महात्मा कैसा होता है? समचित। महात्मा का जो चित होता है समान होता है। जीव गोस्वामी कहते हैं समान चित, अर्थात इस संसार में प्रायः सब लोग धन के पीछे भाग रहे हैं। कहते हैं लक्ष्मीस्तया सहित समो नारायण तत्र पश्यति। जीव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे व्यक्ति ही पैसे को धन को आदर देता है उतना ही आदर भगवान को देने लगे तो उसे समचित कहा जाता है कि ये समचित। आज लोग भगवान को नहीं पूजते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो जितनी पूजा, जितना लक्ष्मी के पीछे, धन के पीछे जितनी मेहनत करते हैं, उतनी मेहनत यदि भगवान के लिए करने लगे तब उसे समचित कहा जाता है। क्योंकि लक्ष्मी संसार का वैभव है और भगवान से कृष्ण और कृष्ण का नाम तो वैभव के भी वैभव है। भगवान और भगवान का नाम इस संसार का परम धन है। जो इस पृथ्वी का धन नहीं, जन लोक, मर लोक, तप लोक, ब्रह्म लोक का, स्वर्ग लोक का भी धन नहीं, भगवान का नाम गोलोक के प्रेम धन, गोलोक का प्रेम धन है, वैकुंठ का यह धन है भगवान का नाम। तो जो भगवान के नाम में और लक्ष्मी में बराबर, कुछ लोग कहते हैं ना, आप लोग भगवान का नाम लेते हो परंतु उसे गिनते क्यों हो? हम लोग बिना गिने भगवान का नाम लेते हैं, हम लोग ये माला बाला नहीं जपते। तो हम तो इतना ही कहते हैं कि अच्छा आप नहीं गिनते हो, पैसे का बंडल आ जाए तो तीन तीन बार गिनते हो है? और वो भी पानी लगा लगा कर, एक दो तीन। पैसे की नोट को आप गिनते हो, बिना गिने रिक्शा वाले से भी पैसा नहीं लेते हो, और भगवान के नाम को नहीं गिनते हो। इसका अर्थ है कि आपको पैसे की वैल्यू है, भगवान के नाम की वैल्यू नहीं है। परंतु हम लोग भगवान का नाम इसलिए गिनते हैं क्योंकि पैसे से ज्यादा हमको भगवान के नाम की वैल्यू है, क्योंकि ये गोलोक का धन है। समचित्ता महात्मा किसे कहते हैं? जिसका चित्त सम हो, समान हो। समचित्ता का दूसरा अर्थ होता है सुख दुख आदिशु विक्रियमाण चित्ता। जिसका चित्त सुख और दुख में सम रहे उसे समचित कहा जाता है। इस संसार में कुछ लोग जब सुखी हो जाते हैं तो बहुत फुदकते हैं, हैं? और दुखी हो जाते हैं तो रोने लगते हैं। परंतु सुख और दुख में सम रहे उसे समचित कहा जाता है। जैसे कल आपने सुदामा जी की कथा सुनी ना, सुदामा जी जब दुखी थे, उनके पास भोजन नहीं था, धन नहीं था, तब भी सुखी थे, तब रोते नहीं थे, रो नहीं रहे थे। कृष्ण रोए, द्वारका में रहने वाले सब लोग रोए। सुदामा इसलिए नहीं रो रहे थे कि उनके पास धन नहीं था, वह दुखी थे। और जब सुदामा को सोने की द्वारका मिल गई फिर भी वो फुदकने लगे नहीं लगे, अपन तो द्वारका के राजा हो गए हैं। नहीं, इसे कहते हैं समचित, सुख और दुख में सम रहना। और समचित का तीसरा अर्थ होता है कि सब में सबको बराबर देखना। हम लोग कभी कभी जो शूद्र होते हैं उसे हीन दृष्टि से देखते हैं, ब्राह्मण को दिव्य दृष्टि से देखते हैं। परंतु जो इस संसार के 84 लाख जीवों को एक समझे, वैसा समझे कि सब में भगवान है, परमात्मा सभी जीव में विराजमान है, इसलिए सबको आदर देना, सबके प्रति समान भाव रखना, इसे समचित कहा जाता है। ये महात्मा का गुण है। महात्मा कैसे होते हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचेन स्वपा के पंडिता समदर्शिना। महात्मा वो है जो ब्राह्मण में, हाथी में, गाय में, कुत्ते में, सब में भगवान का दर्शन करता है और सबको आदर देता है। ये है महात्मा। ये कॉकरोच को देखकर हाथ में झाड़ू नहीं उठाते हैं, अभी मार डालूंगा, ये महात्मा नहीं है। या छिपकली को देखकर झाड़ू हाथ में ले लिया, या चूहे को देखकर पिंजरा हाथ में ले लिया, ये महात्मा नहीं है। महात्मा पुत्रवत पश्येत, जितने भी संसार के जीव हैं अपने पुत्र के समान देखते हैं, ये है महात्मा। देखिए हम लोग महात्मा नहीं है लेकिन हमें महात्मा बनना है, इसलिए इस गुण के ऊपर विचार होना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी अपने परपोर्ट में लिखते हैं कि इस संसार में कुछ लोग भगवान बनना चाहते हैं, सब लोग परमात्मा बनना चाहते हैं, लेकिन कोई भी जीव परमात्मा नहीं बन सकता है, यदि वह भक्ति करे तो महात्मा हो सकता है, महात्मा बन सकते हैं। परंतु महात्मा बनने के लिए ऐसे गुण को हमारे जीवन में डेवलप करना होगा, सबको समान दृष्टि से देखना है, सब में भगवान का। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावम् आत्मनः, सभी जीवों में भगवान का दर्शन करना। लेकिन देखिए, सभी जीवों में भगवान का दर्शन करना ये तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन इसमें भी बुद्धिमानी होनी चाहिए। एक बार एक शिष्य ने ऐसा ही प्रवचन सुना, सब जीव में भगवान का जो देखता है वह शुद्ध भक्त है, वह महात्मा है। प्रवचन सुनकर रास्ते से जा रहा था, बिल्कुल बीच रास्ते में चलते चलते, और एक हाथी पागल हो गया और हाथी के ऊपर महावत बैठा था, कहता ए साइड में हटो, साइड में हटो, साइड। सब लोग साइड में हो गए, लेकिन ये खड़ा रहा, मुझ में भी भगवान है, हाथी में भी भगवान है, भगवान मुझे कैसे मार सकते हैं। और बीच रास्ते में खड़ा रहा, महावत ने ऊपर बैठे बैठे ए साइड में हटो, लेकिन वो सोचा कि हाथी में भी भगवान है, ये सोचकर खड़ा रहा। हाथी आया और एक लात मारा, कई दूर जाकर गिरा, हाथ और पांव फ्रैक्चर हो गया। और गुरुजी के पास गए, गुरुजी आप तो कहते थे सब में परमात्मा है, सब में भगवान है, हाथी ने मुझे लात मार दिया। गुरुजी ने कहा देखो, तुमको हाथी में परमात्मा दिखे, महावत में नहीं दिखे परमात्मा, हाथी आ रहा था और महावत परमात्मा के रूप में कह रहा था साइड में हटो, साइड में। कभी कभी अर्ध आधा ज्ञान होने के कारण, परंतु समचित का अर्थ होता है सबको समान दृष्टि से देखना। और गोस्वामी गिरधरलाल कहते हैं समचिता सर्व प्राणिषु मित्र हरिभाव रहिता। समचिता उसे कहते हैं कि जो सभी जीवों के प्रति मित्रता का स्वभाव रखे, किसी के प्रति शत्रुता न रखे, अजात शत्रु, जिसका इस संसार में कोई शत्रु न हो, उसे समचित कहा जाता है। यह शब्द महाभारत में और भागवत में युधिष्ठिर महाराज के लिए इस्तेमाल हुआ है। युधिष्ठिर महाराज को अजात शत्रु कहा गया था। तो प्रश्न हो सकता है क्या युधिष्ठिर महाराज के शत्रु नहीं थे, ये कौरव की पूरी सेना तो खड़ी थी। हाँ, युधिष्ठिर महाराज के सामने कौरव की सेना खड़ी थी, ये कौरव जो थे युधिष्ठिर महाराज को अपना शत्रु समझते थे, परंतु युधिष्ठिर महाराज स्वयं किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे। इसलिए दुर्योधन आदि मर जाने के बाद युधिष्ठिर महाराज को बहुत शोक हुआ, बहुत दुखी हुए। कभी भी किसी के साथ शत्रुता नहीं, दुश्मनी नहीं, इसे कहते हैं समचिता। और हम लोग देखिए, कभी ट्रेन में सात आठ जन ग्रुप में चढ़ते हैं ना, तो ट्रेन की एक साइड की सीट होती है, आमने सामने तीन तीन लोग बैठ सकते हैं। यदि हम लोग दस जन ग्रुप में चढ़े हैं तो छह जन की सीट में दस लोग बैठ जाएंगे, कोई अपने मित्र को गोद में बिठा लेगा, कोई साइड में जगह दे देगा, पूरा सेट हो जाएंगे। लेकिन वही ट्रेन में, वही डिब्बे में दूसरे दिन आप यदि अकेले जा रहे हो और छह लोग बैठे हैं, तीन यहां, पूरा पांव खोल कर बैठे होंगे, और फिर आप कहोगे थोड़ी बैठने की जगह दे दो ना, तो जगह नहीं देंगे, केवल ऐसा ऐसा हिलेंगे। क्यों भाई, कल तो दस जन बैठ गए, आज सातवें जन को बैठने में तकलीफ हो रही है, हमारा चित सम नहीं है, समान चित होना चाहिए। कल दस बैठे तो आज भी दस बैठ सकते हैं, समान चित, सबके प्रति मित्रता का भाव, किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं। प्रहलाद महाराज के गुरु षंड और अमरक, ये षंड और अमरक ने प्रहलाद महाराज को मारने के लिए कृत्या उत्पन्न की, विष्णु पुराण में वर्णन है। और वह कृत्या हाथ में त्रिशूल लेकर प्रहलाद को मारने के लिए आई, परंतु प्रहलाद को मार नहीं पाई। तब उस कृत्या ने उस त्रिशूल से षंड और अमरक का ही वध कर दिया, मार डाला। प्रहलाद के गुरु षंड और अमरक मर गए। अब हम होते तो कितना खुश होते, हमें तो षंड और अमरक ने तो प्रहलाद को मारने का प्रयास किया था, हमें कोई गाली दे देता है ना तो सोचते हैं ये साला मर जाए तो अच्छा है। लेकिन आप देखिए प्रहलाद महाराज कैसे समचित थे। षंड और अमरक ने मारने का प्रयास किया था, कृत्या ने उस षंड और अमरक को मार डाला, मर गए। और उस समय विष्णु पुराण में वर्णन है, प्रहलाद महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु यदि सच्चे हृदय से मैंने आपकी भक्ति की है, मेरी सारी भक्ति इन दोनों को अर्पण करता हूं, ये दोनों जीवित हो जाए। अपना सब कुछ देकर प्रहलाद महाराज ने उनको मारने वाले शण और अमर को जीवित कर दिया। इसे कहते हैं समचित्ता, समान चित्त। तो महात्मा किसे कहते हैं? जिसमें यह समचित, जिसका चित समान हो, यह महात्मा का पहला गुण है। अब महात्मा का दूसरा गुण बताते हुए कहते हैं प्रशांत। हे मेरे पुत्रों, महान तनस्ते समचित्ता प्रशांता। महात्मा जो है शांत होते हैं, और शांत के आगे प्र शब्द लगा है, प्रकृष्ट रूपेण शांत, पूरे पूरे शांत। महात्मा जो होते हैं उत्पात नहीं करते हैं, उनके मन में उत्पात नहीं होता है, यहां से कमा लूं, वहां कमा लूं, शेयर बाजार में कमा लूं, वे शांत होते हैं। भगवान की कृपा से जो मिला उसमें संतुष्ट रहते हैं, शांत। इसका अर्थ ये नहीं कि बस रात दिन वे सोते रहते हैं। शांत का एक अर्थ बहुत सुंदर कहते हैं, प्र का अर्थ होता है श्रम, श्रम का अर्थ होता है मेहनत। जो मेहनत करे उसे प्रशांत कहते हैं। वास्तव में भगवान चाहते हैं कि संसार के लोग मेहनत करें। अर्जुन भगवद गीता में मेहनत करना नहीं चाहता था, कृष्ण को दूसरे अध्याय के प्रारंभ में ही कह दिया, कुछ भी हो जाए मैं भीख मांगकर मेरा जीवन बिता लूंगा। गुरु न हत्वा ही महानुभावान स्वयं भोक्तुम भेक्ष मी अपीह लोके। मैं भीख मांगकर जीवन जी लूंगा परंतु ऑफिस में नहीं जाऊंगा। हमारे लिए ऑफिस, अर्जुन के लिए युद्ध, क्योंकि वो क्षत्रिय था, हम वैश्य हैं। तो अर्जुन ने कहा कि मैं काम नहीं करूंगा। कृष्ण ने कहा मूर्ख मत बन, काम शुरू कर, क्योंकि आप क्षत्रिय हो और क्षत्रिय बिना युद्ध करे नहीं रह सकता है। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। ऐसे भगवान भी चाहते हैं काम करें। आप भागवत के अष्टम स्कंद में जब इंद्र स्वर्ग हार गए तो भगवान ने इंद्र को कहा कि आप समुद्र मंथन करो और उसे अमृत निकलेगा, अमृत पियो और फिर युद्ध करो। क्या भगवान डायरेक्ट स्वर्ग नहीं दे सकते थे? दे सकते थे, परंतु भगवान चाहते हैं कि उनके भक्त कुछ मेहनत करें, कुछ परिश्रम करें। देखिए भगवान की इच्छा है कि हम लोग मेहनत करें, परंतु इतना भी मेहनत नहीं करना चाहिए ताकि हम भगवान को भूल जाए। आज कुछ ऐसा हो गया, कुछ लोग मेहनत नहीं करने वाले कुछ नहीं करते हैं, और मेहनत करने वाले इतनी मेहनत करते हैं कि भगवान के स्मरण का, भगवान की भक्ति का समय ही नहीं छोड़ते। तो बैलेंस होना चाहिए। तो जो लोग मेहनत करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और भक्ति में भी प्रचार करते हैं, संसार के पापी तापी जीवों को भक्ति में लगाने की जो मेहनत करते हैं, भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। गीता में तो भगवान ने कह दिया कि जो मेरे इस गीता का ज्ञान संसार में प्रचार करता है उससे ज्यादा मुझे इस संसार में कोई प्रिय नहीं है। मेरा सबसे बड़ा प्रिय कौन है? भागवत और गीता का प्रचार करने वाला। भगवान चाहते हैं मेहनत करें। तो महात्मा उसे कहते हैं जो रात दिन मेहनत में लगा हो। हमारे गुरु महाराज कहते हैं जो साधु बनकर, सन्यासी बनकर जो मेहनत नहीं करते हैं, सरकार को चाहिए ऐसे साधुओं से हल जुतवाए, क्योंकि वो मात्र समाज के ऊपर बोझ है। तो चाहिए मेहनत करें, भक्तों को भी चाहिए मेहनत करें। प्रशांत भक्त जो होते हैं मेहनत करते हैं, भजन करते हैं, भक्ति की मेहनत, प्रचार की मेहनत करते हैं। प्रशांत का एक अर्थ होता है, प्रश का अर्थ होता है भक्ति योग, और अंत का अर्थ होता है निश्चय। प्रशांत का एक अर्थ होता है जिसने भक्ति करने का निश्चय ले लिया है, जिसके सभी कार्यों का अंत भक्ति ही होता है, उसे प्रशांत कहते हैं। तो जो लोग भगवान का भजन करते हैं, शांत रहते हैं, उत्पात नहीं करते हैं, उसे प्रशांत कहते हैं। और प्रशांत का एक अर्थ गोस्वामी जी करते हैं कि प्रशांत काम लोभ आदि दोष रहित अंतःकरण, जिसके हृदय में लेश मात्र भी काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य न हो उसे शांत कहते हैं। जैसे विषय हमारे सामने है, प्रशांत किसे कहते हैं? मैं आपको प्रैक्टिकल बात कहूं, कोई यदि भक्त बन गया है और कहीं रास्ते से जा रहा है और अपने पुराने जमाने का फेवरेट गीत गाना आ गया, कोई बजा रहा है और थोड़ा थोड़ा आनंद भी आ रहा है, लेकिन फिर भी वो वहां खड़ा न रहे, इंद्रिय का विषय हमारे सामने है परंतु उस विषय को स्वीकार न करे, उस इंद्रियों के विषय से विचलित न हो उसे शांत कहा जाता है। जैसे समुद्र में अनेकों नदियां प्रचंड वेग से आकर मिलती हैं, लेकिन फिर भी समुद्र ओवरफ्लो नहीं होता है, शांत रहता है। ठीक उसी प्रकार अनेक इंद्रियों के विषय, आंख का विषय हमारे सामने हो, कान का विषय हमारे सामने हो, इंद्रियों का, शरीर का, त्वचा का विषय हमारे सामने हो, भोग सामग्री सब कुछ उपस्थित हो, लेकिन फिर भी उसको स्वीकार न करे उसे प्रशांत कहा जाता है। प्रशांत महात्मा के पास भोग सामग्री सब कुछ होती है लेकिन फिर भी उसे ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए उसे प्रशांत कहते हैं। यह है महात्मा का दूसरा गुण, महात्मा समचित होते हैं और प्रशांत होते हैं। महात्मा का तीसरा गुण बताते हुए कहते हैं विमन्यव। विमन्यव का अर्थ होता है क्रोध रहित, नम्र, सहनशील। जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, वे सहनशील होते हैं, वे सहन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यदि आप भक्ति करना चाहते हो और निरंतर भक्ति करते रहना चाहते हो तो सहनशील बनना होगा। जैसे वृक्ष जेन काटी लेह किछु न बोलाए, वृक्ष देखिए कितना सहन करता है, कितनी भी ठंडी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, उस ठंडी को, गर्मी को, वर्षा को वृक्ष सहन करता है। फिर भी यदि कोई वृक्ष को पत्थर मारता है तो वृक्ष उसे फल देता है। ऐसा नहीं कहता है कि तुम पत्थर मार रहे हो, मैं फल नहीं दूंगा, फल देता है। यहां तक घर का फर्नीचर बनाने के लिए वृक्ष को कोई काट भी देता है तब भी उफ तक नहीं करता है। एक भक्त कैसा होता है, संत कैसा होता है? भक्त कोई कोई गाली दे दे या कोई निंदा कर दे, कोई परिहास कर दे, ये तो बात दूर रही, यदि भक्त को काट भी डाले तब भी मुख से उफ न करे उसे महात्मा कहा जाता है, संत कहा जाता है। कोई कितना भी परेशान करे, दुखी करे, लेकिन फिर भी अपनी भक्ति से विचलित न हो उसे कहते हैं सहनशील, उसे कहते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, आज से 500-600 वर्ष पहले एक बहुत बड़े संत हो गए, जन्म से मुसलमान परिवार में जन्म लिया। मुसलमान परिवार में जन्म लेने के बाद भी कृष्ण के भक्त थे। हमारे भारत में अनेक मुसलमान, रस खान, हरिदास ठाकुर, अनेक लोग कृष्ण के भक्त, कृष्ण की भक्ति करते थे और कृष्ण की भक्ति का प्रचार करते थे। और हरिदास ठाकुर जब कृष्ण की भक्ति करने लगे तो वहां के मुकुल को, काजी को पता चला, मुसलमान राजा को पता चला कि ये हरिदास मुसलमान परिवार में जन्म लेने पर भी हिंदू के धर्म को स्वीकार करके कृष्ण की भक्ति कर रहा है। और उस समय के प्राय सब लोग, मुसलमान लोग, हरिदास ठाकुर को देखकर कृष्ण की भक्ति करने लगे। एक दिन उस मुसलमान राजा ने हरिदास को बुलाया और कहा, हरिदास तुम नरक में जाओगे, जहन्नुम में जाओगे। बोले क्यों? क्योंकि तुम अपना मजहब छोड़कर, कलमा कुरान को छोड़कर ये भागवत और गीता को पढ़ते हो और कृष्ण का नाम ले रहे हो, निश्चित नरक में जाओगे। हरिदास ने कहा कि प्रभु आपको अल्लाह और राम और कृष्ण में अंतर दिखता है, मुझे किसी में अंतर नहीं दिखता है। कहा ठीक है तो हरि नाम लेना छोड़ दो, कृष्ण का नाम लेना छोड़ दो। हरिदास ठाकुर ने कहा प्रभु ये नहीं कर सकता हूं। बोले यदि ये नहीं करोगे तो दंड दिया जाएगा। बोले स्वीकार है। तब हरिदास ठाकुर को दंड दिया और वहां के जल्लादों को आदेश दिया कि इस हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में पीटा जाए। 22 बाजार में पीटने का अर्थ है वहां के गांव में, गांव के चौराहे में लेकर जाना, पूरे गांव को एकत्रित करना और फिर कोड़े और चाबुक से उतना मारना, इतना मारना जब तक वो मूर्छित न हो जाए। फिर उसे दूसरी बाजार में लेकर जाना, जब होश आए फिर से मारना जब तक मूर्छित न हो जाए। ऐसे 22 बाजार में पीटकर मारने का आदेश दे दिया। चार चार जल्लाद हरिदास ठाकुर को लेकर गए, हाथ बांधे हुए, पांव बांधे हुए, और वह जल्लाद हरिदास ठाकुर के ऊपर कोड़ों का वार करने लगे, चाबुक मारने लगे, और प्रत्येक चाबुक कर हरिदास ठाकुर के मुख से हरिनाम निकल रहा था। देखिए इसे कहते हैं सहनशील विमन्य। और यहां जैसे जैसे चाबुक की आवाज आती थी वहां वैसे वैसे हरिदास के मुख से भगवान के नाम की आवाज आती थी। और यहां थोड़ी सी सर्दी हो जाती है, आज माला नहीं जपेंगे, आज मंदिर नहीं जा पाएंगे, थोड़ा सा बुखार आ जाता है तो माला भक्ति सब छोड़ देते हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर को मारा जा रहा था, एक एक करके 22 बाजार तक पीटा गया। और 22वें बाजार में वह जल्लाद हरिदास ठाकुर को मारते मारते थक गए और हरिदास ठाकुर को कहने लगे हरिदास अब तो हरिनाम लेना बंद करो। तब हरिदास ठाकुर ने इतना ही कहा कि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, भले मैं मर जाऊं, खंड खंड होई यदि यह तन प्राण, ताबू ना वदने आमी ना छाड़ी भू हरिनाम, जब तक हृदय में सांस है तब तक हरिनाम लेना यह हरिदास नहीं छोड़ेगा, चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालो, मुझे मार डालो, लेकिन हरिदास के मुख से कृष्ण का नाम कभी बंद नहीं होगा। इसे कहते हैं सहनशीलता। मर जाएंगे परंतु भजन नहीं छोड़ेंगे। हरिदास ठाकुर ने सहन किया। हमारे महाराष्ट्र में एक भक्त हुए संत एकनाथ, पंढरपुर में चंद्रभागा नदी में स्नान किए, ठंडी की सीजन थी, दिसंबर का महीना था, और स्नान करके विठल जी का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। सुबह सुबह तीसरी मंजिल पर एक मुसलमान खड़ा था, सुबह सुबह मुंह में पानी भरा था, इसको क्या सूझी, संत एकनाथ आ रहे थे, उसके ऊपर कुल्ला कर दिया, थूक दिया। तो संत एकनाथ ने देखा कि झूठा पानी आया, तो फिर से चंद्रभागा नदी में स्नान करने गए। दूसरी बार स्नान करके आए तो दूसरी बार मुंह से पानी फेंका, तीसरी बार स्नान करने गए, तीसरी बार पानी फेंका, चौथी पांचवी छठी 50 बार उसने अपने मुख से पानी फेंका। और ये 50 बार स्नान करने गए, 51वीं बार जब स्नान करके आ रहे थे, वो मुसलमान तीसरी मंजिल से नीचे उतरा और संत एकनाथ के चरणों में गिर गया। महात्मा तो बहुत सुने हैं, बहुत देखे हैं, लेकिन आप जैसे सहनशील हैं, मैं 50 बार आपके ऊपर थूका हूं और ऐसी ठंडी में 50 बार आप स्नान करने गए और फिर भी एक बार मुझे कुछ नहीं कहा, वास्तव में आप साधु हो। तब संत एकनाथ ने इतना ही कहा, नहीं नहीं धन्यवाद तो आपका है, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो बहुत आलसी हूं, दिन में एक बार स्नान करता हूं, परंतु आपकी कृपा से आज चंद्रभागा नदी में 50 बार स्नान हो गया। ये है सहनशीलता। और यहां एक बार किसी ने थूक दिया तो इतना खुन्नस से देखेंगे, हाईवे पर जा रहे हैं, ट्रक वाले ने साइड नहीं दिया और फिर कैसे भी करके रॉन्ग साइड से आगे लिया तो इतना खुन्नस से देखेंगे, लगता है आंखों से ही जलाकर भस्म कर देंगे वो ड्राइवर को। परंतु साधु जो होते हैं सहनशील होते हैं। त्रिनाद अपि सुनीचेन तरोर अपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील और तीर्ण से भी ज्यादा नम्र होते हैं, हम्बल होते हैं। साधु को साधु नम्र होते हैं, संत झुके हुए होते हैं। यह है महात्मा का गुण। आगे महात्मा का गुण बताते हुए कहते हैं सुहृद, सुहृदम सर्वभूतानां, सभी जीवों के प्रति सर्वभूत हितैषिण। महात्मा उसे कहते हैं जिसके हृदय में सभी जीवों के सभी जीवों का हित करने की भावना हो, वो है महात्मा। जैसे प्रहलाद महाराज, नरसिंहदेव भगवान ने पूछा प्रहलाद तुझे क्या चाहिए, तो प्रहलाद कह सकते थे ना मुझे गाड़ी बंगला नौकर चाकर अपने लिए ये दे दो, लेकिन प्रहलाद महाराज ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंहदेव को कहा कि यदि आपको मुझे देना ही है तो इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, केवल मनुष्य नहीं, जितने भी मनुष्य है, पशु पक्षी, जितने भी लोग हैं, सबको आपके धाम में लेकर जाइए। इसे कहते हैं सर्व भूत सुहृद, सभी जीवों के प्रति करुणा की भावना। और हम लोग हमारा ही हित चाहते हैं, बाजू वाले का नहीं होना चाहिए। एक बार एक शिव जी का भक्त था, शिव जी को प्रसन्न कर लिया, शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने कहा क्या चाहिए, जो चाहिए मांग लो, लेकिन आप जो मांगोगे उसका दुगुना आपको पड़ोसी को मिलेगा। बोले ये तो गड़बड़ हो गई, मैं एक गाड़ी मांगूंगा तो उसके पास दो गाड़ी हो जाएगी, मैं 1 लाख मांगूंगा तो उसके पास 2 लाख हो जाएंगे। अब इतना परिश्रम करके शिव जी को प्रकट किया, शिव जी ने कहा मांगो मांगो जल्दी, क्या चाहिए। तो उसने कहा एक काम करो शिव जी, मेरी 1 आंख फोड़ दो, वो साले की 2 फूटेगी, और मेरे घर में 1 ऐसा कुआं बना दो जिसमें बाउंड्री ना हो। उसके घर पे 2 कुएं बनेंगे, बाउंड्री ना हो, अंधा गिर जाएगा, मर जाएगा। इसे साधु नहीं कहते हैं, साधु सभी जीवों के प्रति, केवल मनुष्य ही नहीं, साधु जो होते हैं मनुष्यों के ऊपर करुणा करते हैं, मनुष्यों के साथ साथ पशुओं के ऊपर, सभी जीवों के ऊपर करुणा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है, भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र ने पूछा महात्मा किसे कहते हैं, तो महात्मा ते वो महात्मा है जो सुहृद है, विमन्यु है, यहां पर कहते हैं जो सुहद है, सुहद माने सभी जीवों के प्रति करुणा की भावना। इस संसार में कुछ लोग अपने आप को साधु कहते हैं, परंतु सभी जीवों के प्रति करुणा की भावना नहीं है, वे अपने आप को साधु कहने वाले बकरे को काट कर खाते हैं, साधु कहने वाले गाय को काट कर खाते हैं। भगवान ऋषभदेव कहते हैं महात्मा जो होते हैं वे पशुओं के प्रति भी प्रेम करते हैं। आज तो इस संसार में धर्म के नाम पर पाखंड हो रहा है, बड़े बड़े धार्मिक कहते हैं एनिमल हैव नो सोल, पशुओं में आत्मा नहीं होती है, पशुओं में जीव। अरे मूर्ख, जगदीश चंद्र बोस ने कहा वनस्पति में जीव होता है, साइंस ने साबित किया, तो जब एक वृक्ष में जीव होता है तो चलने फिरने वाले पशु में जीव नहीं हो सकता है। एनिमल हैव नो सोल, काटो मारो खाओ, यही धर्म है। और अपने आप को महात्मा कहते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा धर्मवेत्ता कहते हैं, परंतु जिसके हृदय में दूसरों के दुख दूर करने की भावना न हो वो महात्मा नहीं है। महात्मा का तीसरा चौथा गुण कहते हैं साधव, महात्मा वो है जिसका साधु स्वभाव हो। साधु का अर्थ होता है सदाचारा, शिपा सिद्धेश स्वामी कहते हैं सद आचारा, जो जो सद आचार करे उसे साधु कहते हैं। देखिए साधु मात्र बोल वचन नहीं होता है, देखिए यहां पर साधु का अर्थ कह रहे हैं, साधु का अर्थ होता है कि जो उपदेश देता है वो उपदेश अपने जीवन में पालन करता हो, वो साधु है, वो महात्मा है। आज तो उपदेश देने बैठते हैं तो वेद व्यास जी के गुरु बन जाते हैं, लगता है अभी अभी भगवान के अवतार वेद व्यास जी आए हैं, और जब अपने जीवन में पालन करने की बात हो तब कुछ नहीं। परंतु साधु जो होते हैं सदा आचरण, खुद आचरण करते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। साधु का अर्थ होता है पर दोष अग्राहित, जो दूसरों के दोष को कभी नहीं देखते हैं, मात्र दूसरों के गुण को ही देखते हैं। महात्मा इसे कहते हैं जो कभी भी दूसरों के दोष को न देखे। और हम दूसरों में कितना भी अच्छा गुण हो वह नहीं देखेंगे, दोष पहले देखेंगे। जो दूसरों के दोष न देखकर मात्र उनके गुण देखे इसे साधु कहते हैं। साधव राग दोष आदि विदुरा, जिसमें राग द्वेष न हो, जो सबके प्रति समान भाव समान प्रेम करे। साधु का सीधा होता है सरल सिंपल, जिसका जीवन सादा होता है, जो सिंपल होता है। मैंने पहले ही कहा केवल धोती कुर्ता और मुंडन में नहीं, ये गुण जिस व्यक्ति में है वो महात्मा है। फिर चाहे धोती कुर्ता पहना हो, पैंट शर्ट पहना हो, कोई भी वस्त्र पहना हो, यदि यह गुण किसी में है वो महात्मा है। क्योंकि व्यक्ति गुणों से महात्मा बनता है, वस्त्रों से नहीं। साधव पुरुषार्थ साधन दक्षा, साधु का एक अर्थ होता है पुरुषार्थ के साधन में जो दक्ष हो, एक्सपर्ट हो, अर्थात भजन भक्ति तत्व विज्ञान में जो दक्ष हो, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को तत्व से जो जानता हो, उसे साधु कहते हैं। और साधु का एक अर्थ शिवाचार्य स्वामी कहते हैं साधु सदाचार परायण, जो सद आचार जो अच्छा आचरण करते हैं उसे साधु कहते हैं। तब तुरंत एक प्रश्न होगा, अच्छा आचरण किसे कहते हैं भाई? साधु का अर्थ होता है जो अच्छा कार्य करे, तो अच्छा कार्य किसे कहते हैं? तो सब लोग अपने अपने मन से अलग अलग उत्तर देंगे। अब चोर की मंडली में जो अच्छी चोरी करता है वह अच्छा कार्य है ना? ये जितने भी चोर हैं बिन लादेन को अपना भगवान मानते होंगे, क्योंकि वही सबसे बड़ा प्लान लगाता है। जो चोर होते हैं वो अपनी दृष्टि से कुछ अच्छा कार्य सोचते हैं। जो डाकू होते हैं वो डाकू में जो बड़ा डाका डालता है उसे अच्छा मानते हैं। जो वकील होते हैं वो वकीलात अच्छी वकीलात करते हैं उसे अच्छा मानते हैं। जो डॉक्टर होते हैं वो ऑपरेशन अच्छा करने वाले को अच्छा मानते हैं। सब लोग अपनी अपनी दृष्टि से किसी ना किसी को अच्छा बुरा समझते हैं, परंतु हम लोग किसी को अच्छा कहें किसी को बुरा कहें इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान किसको अच्छा कहते हैं ये मुख्य बात है। भगवान की निगाह में कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी बुरी है, तो क्या अच्छा है क्या बुरा है, भगवान ने अपने शास्त्र में सब कुछ लिखा है। तो साधव का, साधु का सीधा अर्थ है जो शास्त्र के नियम का पालन करता है वह साधु है, और जो शास्त्र का पालन नहीं करता है वह असाधु है, साधु नहीं है। शास्त्र का पालन करने वाला साधु है। इस प्रकार साधुओं के गुण बताए। तब भगवान ऋषभदेव के सौ पुत्र कहते हैं ऐसे जो साधु आपने बताए उसमें इतने बड़े बड़े गुण, ये लोग संसार में कैसे रहते हैं, ये लोग गृहस्थी में कैसे रहते हैं? क्योंकि हे पिताजी, हम भी अब कृष्ण भावना अमृत को पुनः जीवित करना चाहते हैं, हम लोग ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, तो प्रैक्टिकल बताइए कि हम इस संसार में कैसे रहें, किससे मित्रता करें, घर वालों से कैसे संबंध रखें। तब अगले श्लोक में, तीसरे श्लोक में कहते हैं ये वामयिषे कृत सोरदार्था जनेषु देहं भरवार्तिकेषु गृहेषु जायात्मजरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता यावदार्चलोके। कहते हैं प्रैक्टिकल बताइए किस प्रकार से हम मित्रता करें, किससे मित्रता करें। तो सर्वप्रथम कहते हैं यदि मित्रता करनी है तो मई इशे, मुझ ईश्वर के साथ मित्रता करो, मेरे साथ मित्रता करो, भगवान के साथ। क्यों? क्योंकि ईशे, ईश्वर का अर्थ होता है नियंता, कंट्रोलर। और वास्तव में मित्रता उसके साथ करनी चाहिए जो कंट्रोलर हो सबका, तब हम फायदे में रहते हैं। तो कहते हैं मई ईशे कृत सौहृद अर्था, अपने जीवन का जो भी अर्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन के सारे कार्य मेरे लिए करो, मुझसे मित्रता करो। आपने कल देखा ना, सुदामा ने कृष्ण के साथ मित्रता की। कहते हैं उसी प्रकार मित्रता यदि करनी है मेरे साथ करो। तो कैसी मित्रता? कभी मन में होता है क्या भगवान भी मित्रता करते हैं? भगवान बहुत अच्छी मित्रता करते हैं। आज भी, कुछ ही साल पहले की बात है, एक बार वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, कृष्ण को मित्र के भाव में मानते थे। कृष्ण विग्रह के रूप में उनके मंदिर में थे और रात दिन कृष्ण की आरती करना, पूजा करना, पुजारी की सेवा करते थे, और कृष्ण भी उसे अपना मित्र समझते थे। एक बार ये पुजारी कृष्ण की बहुत सेवा कर करके थक गए थे और कृष्ण को पंखा जल रहे थे, तो पंखा जल रहे थे तो पंखा डालते डालते इसको नींद आ रही थी, झपकी आ रही थी। तो जैसे ही झपकी आती थी, पंखा का जो एक छोर था वो कृष्ण को यहां लग जाता था ऐसे। कृष्ण ने देखा, एक बार पंखा लगा, दो बार लगा, तीसरी बार पंखा लगा, कृष्ण ने जोर से थप्पड़ गाल पर चमाटा मारा और उसकी नींद उड़ गई। सत्य घटना, कुछ ही साल पहले। तब वो तो मित्र के भाव में, अच्छा रात दिन में भोग लगाता हूं, सेवा करता हूं, आरती करता हूं, पूजा करता हूं, और आज इतना थक गया था फिर भी पंखा डाल रहा हूं, यदि भूल से दो तीन जबकि आ गई तो इतना जोर से थप्पड़ मारा, गाल सूज गया, लाल लाल हो गया, आज से सेवा नहीं करूंगा, जाकर सो गए। फिर मंदिर के जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट, वे आए, देखा तो मंदिर बंद था, तो वे पुजारी सोए हुए थे, उसको जगाया, बोले आज क्यों मंदिर भगवान के दरवाजे बंद है? बोले मैं सेवा नहीं करूंगा। बोले हुआ क्या, वो तो बताओ। बोले इतना जोर से तमाचा मारा, मैं इतनी सेवा करता हूं, रात दिन मेहनत करता हूं, अरे पंखा डालने में जबकि आ गई। तो कहा कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ। भगवान के मंदिर के दरवाजे खोले और वे भी कृष्ण के साखे भाव में कृष्ण को कहा, देखो आज से तुम्हारी पूजा आरती सब बंद हो जाएगी, चलो इसे माफी मांगो, माफी मांगो, नहीं तो पूजा आरती बंद। कृष्ण तुरंत उस मूर्ति से प्रकट हुए और दोनों हाथ जोड़कर उससे क्षमा मांगे। यह है सौहृद, यह है मित्रता निभाते हैं। तो कहते हैं मुझसे मित्रता रखनी चाहिए। और देहाम भर जनेशु वार्तिकेशु प्रीति न युक्ता। और इस संसार में देह अंबर जनेशु, जो मात्र भरण पोषण की बात करते हैं, सांसारिक बातों में जो उलझे हुए हैं, जो 24 घंटा संसार की बातें करते हैं, ऐसे लोगों के साथ प्रीति न युक्ता, आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। जो भगवत कथा करते हैं, कभी भी मिले तो कुछ भगवान की चर्चा करे, कुछ ज्ञान की बातें करे, उससे आसक्ति रखनी चाहिए। जो लोग मात्र देहांबर जनेशु वार्तिकेशु संसार की चर्चा करते हैं, रात तो शेयर बाजार की है, कितनी चर्चा है? अब लिए हैं 1000-1500 के शेयर और बात तो करेंगे हैं? पूरा टाटा की कंपनी खरीद ली है, ऐसी बात करेंगे कि आज तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, रात दिन बस इसी की बातों में लगे रहते हैं। मुझे तो लगता है रात को सोते होंगे तभी वो दो लाइन सपने में आती होगी शेयर बाजार की। तो ऐसे लोगों से आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। तो मानो कहा कि पिताजी प्रैक्टिकल बताओ, यदि ये लोग रास्ते में मिल गए तो? तो भगवान ऋषभ देव कहते हैं कि ठीक है, रास्ते में मिल गए तो उसे मिलना चाहिए। देखिए एक महत्वपूर्ण शब्द है प्रीति न युक्ता। यहां मिलने की ना नहीं कह रहे हैं। अब देखिए काम धंधा बिजनेस करने के लिए ऐसे लोगों से हमें मिलना पड़ेगा, नहीं तो आप सोचोगे बस महात्माओं से ही मिलेगी तो कमाने कहां जाओगे हैं? महात्माओं के बीच में ऑफिस तो खोली नहीं जाती है। तो यहां पर मिलने की ना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मिलना चाहिए परंतु उसमें रचा पचा नहीं होना चाहिए। प्रीति न युक्ता, प्रीति युक्त नहीं है वो लोग मिलने के, हाय हेलो करना है। और यदि उसमें बहुत आपको इंटरेस्ट है तो उसको प्रचार कीजिए, लेकिन उसका रंग हमको न चढ़ जाए यह ध्यान रखना है। हमारा रंग उसको चढ़ जाए परंतु उनका रंग हमारे ऊपर ना आ जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए उससे मिलना चाहिए। तो ये हुआ समाज के अलग अलग लोगों को मिलना। अब कहते हैं गृहेषु प्रीति न युक्ता। अब कहते हैं गृह में, घर में भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। कुछ लोगों की घर में बहुत आसक्ति होती है, घर छोड़ते ही नहीं है। गृह व्रत जिसे कहते हैं, घर में रहने का व्रत कसम खाकर बैठे हैं, मर जाएंगे लेकिन संडे को घर से मंदिर में नहीं जाएंगे, घर से नहीं निकलेंगे। हम लोग बुलाते हैं कम से कम रविवार को मंदिर में आइए, इस्कॉन में आइए, बहुत सुंदर प्रवचन कीर्तन होता है। नहीं, गृहेषु प्रीति, घर में ही आसक्ति हो जाती है। परंतु भगवान ऋषभदेव कहते हैं गृहेषु प्रीति न युक्ता। जिसको गृह में आसक्ति हो गई वह भगवान को कभी पा नहीं सकता है। घर से आसक्ति छोड़नी होगी। एक राजा को अपने घर में बहुत आसक्ति थी, किसी महात्मा ने उपदेश दिया, घर से आसक्ति मुक्त हो गई। तो राजा ने सोचा कि अब कल मैं जंगल में चला जाऊंगा घर छोड़कर और भगवान को प्राप्त करूं। लेकिन होते हैं ना संसार में कुछ लोग, अरे मन चंगा तो कथोटी में गंगा, बाहर जाने की क्या जरूरत है, सब कुछ घर में है, घर में देखो भगवान को है। घर में झगड़ा के अलावा कुछ है? राजा को दो पांच लोगों ने कह दिया जाने की जरूरत नहीं, घर पे रहो सब हो जाएगा। राजा ने अपना प्लान चेंज कर दिया। तो ये बात एक संत को पता चली कि राजा घर छोड़कर वन में जाने वाले थे भगवान को प्राप्त करने, लेकिन उसने अपना प्लान चेंज कर दिया। तब वो जो संत थे ऊंटहारे का रूप लेकर आए, ऊंटहारा माने ऊंट बेचने वाला। ऊंटहारे का रूप लेकर राजा के राज्य में आए और सबके घर पर जा जाकर बेल बजाते, रात को 12 बजे 1-1 बजे वो घर वाले खोलते, बोलो क्या है? बोले मेरा ऊंट खो गया है, आपके घर पे तो नहीं आया, जरा देखो ना। बोले घर का दरवाजा तो देखो, इतने छोटे दरवाजे में आपका इतना बड़ा ऊंट कैसे घुस सकता है, क्यों रात को परेशान कर रहे हो? दूसरे घर में जाकर मेरा ऊंट देखा आपने, मेरा ऊंट देखा, पूरे राज्य में सबके नाक में दम करके रख दिया। और राज्य में रहने वाले सब लोग राजा के पास कंप्लेंट लेकर गए कि ये ऊंटहारा आया है, परेशान कर दिया है हमको। राजा ने उसको राज्यसभा में बुलाया, बोले सबको क्यों परेशान कर रहे हो? बोले परेशान कहां कर रहा हूं, मेरा ऊंट खो गया है, मेरा ऊंट खो गया है, मैं ऊंट को ढूंढ रहा हूं सबके घर पर। राजा ने कहा मूर्ख, तुझे पता नहीं चलता है तेरा इतना बड़ा ऊंट छोटे से घर में कैसे जा सकता है? बोले राजन यही समझाने आया हूं, इतने बड़े विभू भगवान जो अपने मुख में अनंत कोटि ब्रह्मांड को रखते हैं, वो भगवान तुम्हारे छोटे से घर में कैसे रह सकते हैं? बाहर निकलिए, घर से बाहर निकलिए और भगवान की प्राप्ति कीजिए। गृहेश, गृह में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो फिर गृह का क्या करें? हां, गृह को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। गृह में भगवान की मूर्ति, भगवान का अर्च वगैरह लाकर मंदिर बनाना, घर में आध्यात्मिक उत्सव करना, वैष्णव भक्तों को बुलाकर भोजन करवाना, इस प्रकार गृह में रहना चाहिए। तत्पश्चात आगे कहते हैं जाया प्रीति न युक्ता। एक एक बात समझा रहे हैं। संसार में ऑफिस में जाते हो, वहां जो लोग मिलते हैं उससे कैसे रहना है ये बता दिया, हाय हेलो करना है, बहुत डीप में नहीं जाना है, गहराई में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से हरे कृष्ण करना है, हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्ण करो। और घर जो है, घर में आसक्ति नहीं, घर में वैष्णव को बुलाना, मंदिर रखना, सेवा पूजा करना। अच्छा, जाया पत्नी के साथ। देखिए अब जाया प्रीति न युक्ता, यहां पर भगवान ऋषभ देव ऐसा नहीं कर रहे हैं कि पत्नी को छोड़ देना चाहिए। देखिए मेरे प्रवचन का कोई गलत इफेक्ट ना आ जाए। पत्नी को छोड़ने की बात शास्त्र में कहीं नहीं लिखी है। एक पति को अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मनु महाराज जब वन में गए अपनी पत्नी को साथ में लेकर गए, भगवान भोलेनाथ एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी, अपनी पत्नी को साथ में लेकर कभी छोड़े नहीं। देखिए पत्नी को नहीं छोड़ना है, परंतु पत्नी में जो आसक्ति है उसको छोड़ना है। और पत्नियों के लिए पति को नहीं छोड़ना है, परंतु उसमें जो आसक्ति है वह आसक्ति भगवान में लगानी है। यह बात समझना होगा, ये प्रैक्टिकल बात समझा रहे हैं। प्रीति नहीं युक्ता, इसका एक अर्थ यह कि छोड़ना नहीं है, साथ में रहना है, सब कुछ साथ में। क्योंकि गृहस्थ धर्म का उपदेश जब नारद मुनि दे रहे थे तो उस गृहस्थ धर्म के उपदेश में सबसे पहला सिद्धांत यह था, गृहेशु अवस्थितो राजन कुर्वन क्रिया यथोचिता वासुदेव अर्पणम साक्षात उपासित महामुनिम। गृहेशु अवस्थित, एक गृहस्थी को चाहिए कि गृहस्थी में ही रहे, परंतु उस गृहस्थी में आसक्त न हो जाए, इस बात को ध्यान रखे। जाया प्रीति न युक्ता, जाया में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। पत्नी के साथ रहना, उनके साथ बात करना और पति पत्नी को साथ में मिलकर वैष्णवों को भक्तों को घर पर बुलाना, उनकी सेवा करना, इससे जीवन सुखमय हो जाता है। चाणक्य पंडित ने नीति शास्त्र में लिखा है कि यदि आप अपने घर पर भगवान का मंदिर रखते हो, भगवान की रोज पूजा करते हो, आपकी पत्नी यदि भक्त है, भक्तों की सेवा करती हैं, आपके पुत्र यदि भक्त हैं और घर पे वैष्णव आते हैं, प्रसाद लेते हैं, कथा कीर्तन होता है, तो वैकुंठ में जाने की जरूरत नहीं, यह घर ही वैकुंठ बन जाता है। और साथ साथ चाणक्य पंडित ने यह भी लिखा है कि यदि हमारा कुछ ठिकाना न हो, पत्नी कर्कश स्वभाव की हो, बच्चे जो है हमारा कहना मानते न हो, घर पर कभी वैष्णव न आते हो, भगवान की पूजा न होती हो, भगवान को भोग लगाकर भोजन न करते हो, तो नरक में जाने की जरूरत नहीं, ये घर ही नरक बन जाता है। तो इस प्रकार बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, जाया अपनी पत्नी को भक्तों की, भगवान की सेवा में। और फिर कहते हैं आत्मज प्रीति न युक्ता, आत्मज माने पुत्र संतान, संतान के साथ में रहना है, उनका भरण पोषण करना है, परंतु प्रीति न युक्ता, उनमें आसक्ति नहीं रखनी है। जिसने अपने संतान में आसक्ति रखी वह दुखी होगा ही, इसमें कोई दोराय नहीं है। क्योंकि आपकी अपने संतान में आसक्ति है, आपका संतान आप में आसक्त नहीं है, वह किसी और में आसक्त है, भरथरी जैसा होगा फिर। इसलिए पहले से ही यहां पर सतर्क कर रहे हैं, देखो आत्मज प्रीति न युक्ता, पुत्र में आसक्ति, इसका अर्थ यह नहीं पुत्र को छोड़ देना चाहिए, रखना चाहिए, उनको भरण पोषण कराना, लेकिन इसी के साथ साथ पुत्र को भक्त बनाना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पुत्र को भक्त बनाकर उसे भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। एक पिता का कर्तव्य है अपने पुत्र को भक्त बनाए, ये भगवान ऋषभदेव आगे कहेंगे। भगवान ऋषभदेव सीधा कहेंगे कि हे मेरे पुत्रों, मैं तुम्हें उपदेश इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूं, और इस संसार में वही पिता पिता है जो अपने पुत्र को इस प्रकार से शिक्षा देता है। जननी न सस्यात, पिता न सस्यात, गुरु न सस्यात, वह श्लोक आएगा, वह मां मां नहीं है, वह पिता पिता नहीं है जो अपने पुत्र को भक्त न बनाए, न मोचयेत समुपेत मृत्यु। तो एक पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को योग्य मार्ग दिखाए, क्योंकि बच्चा बचपन में कोमल होता है, उसे आप जैसा सिखाओगे वैसा सीखेगा। बच्चे के सामने सिगरेट पियोगे, बड़े होकर वो भी सिगरेट पिएगा। आप सोचते हो कि मैं तंबाकू खाऊंगा, गुटखा खाऊंगा, सिगरेट पीऊंगा और मेरा बेटा साधु होगा, कभी हो नहीं सकता है। बच्चे को साधु बनाने के लिए सबसे पहले स्वयं हमको साधु बनना हो तो आत्मज पुत्र को लगाना है। रतिर मस्तु न प्रीति युक्ता, रतिर मस्तु का अर्थ होता है धन संपत्ति में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, धन संपत्ति में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तब एक आचार्य ने प्रश्न उठाया, ननु एवं सर्वथा विरक्ते देहस्य, मान लो ये सो पुत्र कहे पिताजी आप तो कहते हो घर में आसक्ति न रखे, पुत्र में न रखे, पत्नी में न रखे, सजनों में न रखे है, और पैसे में भी आसक्ति न रखे तो घर चलेगा कैसे, घर कैसे चलेगा। तब भगवान ऋषभदेव अंत में बहुत सुंदर बात कहते हैं इस तीसरे श्लोक के अंत में, यावत अर्थाच लोके, धन कमाना चाहिए, सभी व्यक्ति को चाहिए कि धन कमाए, परंतु कितना, यावत जितनी जरूरत हो उतना ही धन कमाए। जरूरत से ज्यादा धन ये बहुत गलत काम है। सस्तेन, यदि कोई जरूरत से ज्यादा धन अर्जित करता है तो भागवत में तो कहा गया कि वह चोर है, स वह चोर है, दंडम अर्हति, और निश्चित उसे दंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि संसार में भगवान ने सबको अपना आपका अपना अपना धन का कोटा दिया है, और अपनी जरूरत से ज्यादा धन ले लेता है तो दूसरे का कोटा इस्तेमाल कर रहा है। तस्मात सस्तेन, इसलिए वह चोर है, दंडम अर्हति, दंड मिलेगा। इसलिए धन भी उतना ही अर्जित करें जितनी जरूरियात है। आज इस संसार में सब लोग धन के पीछे पागल हो गए हैं। वास्तव में धन की ही हमारे जीवन में कितनी आवश्यकता है, जहां तक हमारा शरीर चल सके। मैं भी भूखा न रहूं और साधु भूखा न जाए, हम तीन टाइम खा सके, कपड़े पहन सके, और यदि साधु घर पर आ गए तो उनको खिला सके, उतना धन होना चाहिए। और भगवान की कृपा से इतना सबको मिल जाता है, लेकिन टेंशन हम जमा करेंगे, बैलेंस बनाएंगे, ये टेंशन है। इसलिए रात दिन सब लोग लगे हैं, हजार पति हैं, वह लखपति बनना चाहता है, लखपति करोड़पति बनना चाहते हैं, परंतु एक एक मिनट के लिए आप सोच लो, यदि आप लाखपति और करोड़पति बन गए, पांच रोटी खाते होगे तो पांच ही खाओगे, पचास खाओगे, भाई अब तो हम करोड़पति हो गए, आज पचास रोटी बनाइए, नहीं, जितना खाना है उतना ही, पेट भगवान ने जितना दिया है उतना ही खाओगे। और यदि लखपति से करोड़पति हो गए तो एक शर्ट पहनते तो एक ही शर्ट पहनेंगे, पांच पांच पहन के निकलेंगे, नहीं, क्वालिटी शायद थोड़ी बहुत आगे पीछे होगी। और लखपति से करोड़पति हो गए तो करोड़ रुपए जेब में लेकर तो घूमने वाले हैं नहीं, करोड़पति होते क्या जेब में लेकर घूमते, नहीं, वो तो बैंक बैलेंस में पड़े होते हैं या आंगड़िया में पड़े होते हैं, है? बस केवल मन में सोचते हैं कि हमारे बैलेंस में इतना बैलेंस पड़ा है, और बैलेंस तो पड़ा ही रह जाता है, ये उठ जाता है, तो न तो जीवन में वो बैलेंस कभी काम में आता है। रोटी भी उतनी खानी है, कपड़ा भी उतना ही पहनना है, केवल समझता है कि बस इतना पड़ा है, तो इतना पड़ा है बैंक बैलेंस में, ये समझ कर ही खुश रहना है। तो समझ लो दुनिया में जितने भी बैंक है हमारे बाप की है, सब भूमि गोपाल की, सब कुछ हमारा है, संतुष्ट होना चाहिए। परंतु इस संसार में संतोष नहीं है। हई धन गज धन बारी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जब तक ये संतोष नामक धन नहीं आता है तब तक जीवन में सुख नहीं हो सकता है। इस संसार में बहुत बहुत लोग आए, दस मस्तक वाला रावण आया और सोने की लंका मिल गई, संतोष नहीं था, दुखी रहा। न तो सोने की लंका में रहने वाले रावण, उसको क्या दुख हो सकता है, संतोष नहीं था। सहस्त्र बाहु एक से एक आए, हम करी धन धाम सवारे, अंत चले उठ रीते, ये हम, ये मैं और मेरा, ये मेरी ऑफिस, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा बैलेंस, ये कर करके अंत में क्या हुआ, सब लोग उठ गए, सब लोग मर गए। अब जमा करके क्या करेंगे, मरने के बाद कुछ साथ में तो लेकर नहीं जाएंगे, इस संसार का धन यहीं पर रह जाता है, साथ में कुछ नहीं आता है। सिकंदर, हमारे इतिहास में सिकंदर नाम का एक व्यक्ति हो गया, अलेक्जेंडर, जो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, शक्तिशाली था। उनके पिता पुरु ने सिकंदर को बहुत समझाया, बेटा दुनिया जीत को जीतकर क्या करेगा, लेकिन गरम खून था, नहीं दुनिया जीत कर रहूंगा। और सिकंदर निकला दुनिया जीतने के लिए, प्रायः पूरी दुनिया को जीत लिया, परंतु पता चला कि सिकंदर को क्षय रोग हुआ है। क्षय रोग माने आज का कैंसर। सिकंदर तुरंत वापस आया और लगभग लोग कहते हैं, इतिहास कहता है कि 80% दुनिया को जीत लिया था, 80% दुनिया को जीत लिया था। और वह सिकंदर जब मर रहा था तो इतना कह के मरा कि मेरे दोनों हाथ ऊपर रखना, जब मुझे पृथ्वी में गाड़ोगे मेरे दोनों हाथ ऊपर रखना। सैनिकों ने पूछा, ऐसा क्यों, आज तक हमारी परंपरा में ऐसे किसी को भूमि में नहीं गाड़ा है, आप दोनों हाथ ऊपर रखने के लिए क्यों कह रहे हैं। तब सिकंदर ने इतना ही कहा कि मैं तो जीते जी नहीं समझ पाया, परंतु आने वाली जनता मेरे उदाहरण से समझ सके कि सिकंदर जब इस दुनिया में आया तब दोनों हाथ खाली थे, और सिकंदर जब इस दुनिया से जा रहा है दोनों हाथ खाली हैं। कितना भी कमाओगे, करोड़ों एकत्रित करोगे, लेकिन साथ में कुछ नहीं आएगा। सिकंदर पूरी दुनिया का राजा, हम तो 2-3 मकान के भी राजा नहीं है, पूरी दुनिया का राजा जब जा रहा था, एक चिथड़ा भी साथ में लेकर नहीं गया। इकट्ठे कर जहां के घर, सभी मुल्कों के मालिक थे, सभी मुल्कों के मालिक। इकट्ठे कर जहां के घर, सभी मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब गया दुनिया से तब दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ। और हम सोचते हैं कि एकत्रित करेंगे इतना बैलेंस, बैलेंस क्या करेंगे। और कुछ लोग सोचते हैं कि चलो सेफ्टी के लिए बैलेंस होगा तो काम में आएगा, लेकिन शास्त्र कह रहा है जरूरत से ज्यादा बैलेंस रखते हो तो दंड मिलेगा, चोर कहलाओगे। संसार के लोग तो वाह करेंगे, वाह इतना पैसा, इतना पैसा, लेकिन भगवान की निगाह में वह चोर है। सस्तेन दंडम अर्हति, निश्चित दंड मिलेगा उसे। इसलिए यावत अर्थाच लोके, भगवान ऋषभदेव इस तीसरे श्लोक के अंत में कहते हैं कि जितनी जरूरत हो उतना ही धन एकत्रित करें, जरूरत से ज्यादा धन नहीं कमाना चाहिए। इस प्रकार भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं, और समय तो रोज जा रहा है, केवल 3 श्लोक हुए हैं। तो इस प्रकार भगवान ऋषभदेव ने कहा कि जितना जरूरत हो उतना ही धन कमाना चाहिए। तब भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र कहते हैं, पिताजी ये इंद्रियां भगवान ने दी हैं, तो इस इंद्रियों को भौतिक भोगों द्वारा सुखी करने में क्या हर्ज है। कुछ लोग कहते हैं ना, ये सब कुछ भगवान ने ही बनाया है, तो उसको खाने में पीने में भोगने में क्या हर्ज है। भगवान ने यह इंद्रिया दिया है तो इस इंद्रियों को सुखी करने में क्या तकलीफ है, उससे क्या प्रॉब्लम होगा। तब भगवान ऋषभदेव आगे कहते हैं, नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म यत इंद्रिय प्रियते आपृणोति। हे मेरे पुत्रो, मनुष्य जब अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, जब कोई व्यक्ति अपनी आंख को, कान को, हाथ को, त्वचा को, जिह्वा को खुश करना चाहता है, अपने आप को सुखी करना चाहता है, तो निश्चित नूनम प्रमत्तम विकर्मे कुकर्म, उसे पाप होगा ही। अपने को सुखी करने की भावना जिसको आ गई उससे पाप होगा, होगा और होगा ही। क्यों? क्योंकि भगवान को खुश करने के अलावा इस संसार में जितने भी कार्य हैं वो कार्य कार्य नहीं, वो पाप है। संसार में सब कुछ भगवान का है, क्योंकि ईशावास्य इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मागृत कस्य स्विद्धनम। ईशावास्य इदम सर्वम, ये इदम सर्वम, ये सर्वम जो हमें दिख रहा है सब कुछ भगवान से प्रकट हुआ है। इस संसार में सभी वस्तुएं भगवान की हैं, यहां तक यह देह भी भगवान ने दिया है। तो इस संसार में सब कुछ भगवान का होकर हम भगवान के लिए नहीं करेंगे और हमारे लिए करने लगेंगे तो वह कार्य पाप कहा जाएगा और उसे पाप होगा। वैसे इस संसार में इंद्र तृप्ति करने के बहुत सारे साधन हैं और जितने साधनों से लोग अपनी इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं उतने पाप भी हैं। लेकिन सभी पापों की जड़ चार पाप है, जिसे श्री प्रभुपाद जी प्रथम में ही कह देते हैं यह नहीं करना है। चार पाप ऐसे हैं जो सभी पापों के जड़ है और वो है मांसाहार करना, मांस मछली अंडा अखाद्य वस्तु प्याज लहसुन, इसके द्वारा पाप धीरे धीरे बढ़ते हैं, पाप की जड़। तत्पश्चात दूसरा पाप है नशा करना। कुछ लोग सोचते हैं कि हम नशा करके अपनी इंद्रियों को तृप्त करेंगे, फिर चाहे शराब का नशा हो, सिगरेट का, तंबाकू का, चाय का भी नशा माना जाता है, गुटखा, ये नशा भी बहुत बड़ा पाप है। फिर तीसरा पाप है जुआ, लोग आनंद लेते हैं जुआ खेलने में। चौथा है पर स्त्री संग, अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्री का संग। भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि इस प्रकार से नशा करके, मांसाहार करके, जुआ खेल के, पर स्त्री संग करके जो लोग अपनी इंद्रियों को संतुष्ट और सुखी करना चाहते हैं न साधु मनिए। आप श्लोक में देख सकते हैं सीधा कह रहे हैं न साधु मनिए, मैं उसे अच्छा नहीं मानता हूं। अब भगवान की निगाह में ये कार्य करने वाले अच्छे नहीं है, इसलिए हमको ये कार्य नहीं करना चाहिए। सीधी सीधी बात है, भगवान को पसंद नहीं है तो हमें नहीं करना है, यही धर्म है। भगवान को जो अच्छा लगा वह किया और भगवान को जो अच्छा नहीं लगा वह नहीं किया, यही है सबसे बड़ा धर्म, यही है सबसे बड़ी भक्ति। भगवान सीधा कहते हैं न साधु मनिए, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मानो भगवान को पूछा जाए, सो पुत्र पूछे, पिताजी आपको ये सब क्यों अच्छा नहीं लगता है, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, हमको तो बहुत अच्छा लगता है। मानो हम जैसे लोगों ने पूछ दिया भगवान ऋषभदेव को कि आपने नहीं पिया है इसलिए आपको पता नहीं, एक बार पी के तो देखो हमारे साथ बियर बार में, आपको अच्छा क्यों नहीं लगता है। कभी कभी भक्तों को भी लोग पूछते हैं है? गांजा पीते हैं और कहते हैं कि पी लो ना एक, तो हम कहते हैं नहीं नहीं हम लोग नहीं पीते। बोले पीना नहीं है, कम से कम हाथ में तो धरो, आदर तो करो कम से कम गांजे का। कहते हैं आप लोग पीते नहीं हो इसलिए इसका आनंद नहीं। मान लो भगवान ऋषभदेव को पूछा जाए कि आप न साधु मनिए, आपको क्यों ये सब अच्छा नहीं लगता है, जुआ खेलना, सिगरेट, तंबाकू, प्याज लहसुन, चाय कॉफी, ये क्यों अच्छा नहीं लगता है। तब भगवान ऋषभदेव उत्तर देते हैं इस चौथे श्लोक में, यत आत्मन क्लेशद देह आस। देखिए मैं केवल संस्कृत श्लोक का अनुवाद कर रहा हूं। भगवान को पूछा कि आपको ये क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, तो कहते हैं यत आत्मन, यदि ये जुआ खेलेंगे, मांसाहार करेंगे, पाप करेंगे, तो इससे आत्मा को क्लेशद दुख देने वाला शरीर प्राप्त होता है, अर्थात इससे यह आत्मा नरक में जाती है। यदि कोई मांसाहार करता है तो वह नरक में जाता है, कुंभीपाक नरक में। यदि कोई चाय कॉफी प्याज लहसुन खाता है वह भी नरक में जाता है, पर स्त्री संग करने वाला भी नरक में जाता है, जुआ खेलने वाला भी नरक में जाता है। और केवल नरक ही नहीं, क्लेशद माने देना, क्लेश देने वाला शरीर प्राप्त 84 लाख के चक्कर में फंसता है। यहां पर अपने मौज करने के लिए कुछ लोग कहते हैं 4 दिन की चांदनी ऐश कर लो यार, किसने देखा है, अरे मूर्ख, तूने नहीं देखा तो क्या नहीं है? कुछ लोग कहते हैं है? कभी कभी, अब तो मोबाइल आ गया, पहले तो MTNL का फोन था, तो फोन में STD में बात करते हैं आधा घंटा एक घंटा, तो उसको कहते हैं कि अब फोन रखो बिल आएगा। तो कहते बिल कहां दिख रहा है, मैं देखूंगा तब मानूंगा, बिल तो है नहीं। तो बिल आपको नहीं दिख रहा है तो क्या बिल नहीं आएगा? एक महीने के बाद MTNL वाले एक एक सेकंड का हिसाब करके भेजेंगे और फिर वह बिल चुकाना होगा। ठीक उसी प्रकार अभी जो हम पाप कर रहे हैं हमें पता नहीं है इसका क्या होगा, परंतु मरने के बाद इसका हिसाब किताब चुकाना होगा। और पाप करने वाले मरने के बाद सीधा नरक में जाते हैं, जो नरक यहां से 99,000 योजन दूर पृथ्वी लोक के नीचे गर्भोदक सागर के ऊपर दक्षिण की छोर में है, नरक में जाते हैं। नरक में हजारों वर्ष तक सजा भोगते हैं और फिर ऐसा मत समझो कि फिर हम छूट जाएंगे, फिर उसे 84 लाख के चक्कर में डाल देते हैं, कभी गाय कभी बैल कभी गधा कभी कुत्ता कभी ये फिर 84 लाख जन्म मरण के बाद एक बार मनुष्य का शरीर मिलता है, उसमें चांस मिलता है कि थोड़े भगवान की भक्ति कर लिया भजन कर लिया तो 84 के चक्कर से निकलकर फिर से भगवान के धाम में। परंतु वह मनुष्य जीवन में वह चांस ऐश आराम 4 दिन की चांदनी करता रहा तो फिर से नरक में फिर से 84 के चक्कर में वो घूमता रहेगा, 84 के चक्कर। न जाने हम लोग कितने वर्षों से घूम रहे हैं इस चक्कर में, घूमता रहता है। तब मानो भगवान ऋषभदेव के पुत्रों ने कहा कि तो फिर ये जीव कब तक 84 के चक्कर में घूमता रहेगा? ये 84 लाख चक्कर का अंत कब आएगा? तो 84 लाख चक्कर का अंत कब आएगा इसका जवाब भगवान ऋषभदेव कल देंगे। कैसे हम ये 84 लाख के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं और भी बहुत सारे उपदेश सिद्धांत का वर्णन होगा। भक्तों से निवेदन है आइए अपने जीवन को धन्य कीजिए।